Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin Ebil Kasim Muhammed. Ve alihi tayyibine tahirine almasumine allazine azhaballahu anhumur ricisa ve tahharahumu tatihira. سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني يشرج اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين فورٹین فورٹی ایٹ ہجرہ کے ایام اعظم میں پہلے عشرے کی آج یہ ساتویں مجلس ہے اور یہ مجلس جب بھی میں پڑھتا ہوں ساتویں محرم نہیں باب الحوائج کے مصائب کی کہیں سات محرم کو یہ مصائب ہوتے ہیں کہیں آٹھ محرم کو تو اتنی ساری مختلف باتیں مجھے بیان کرنا ہوتی ہیں کہ جو اس سے پہلے کے مجلسیں ہیں بعض اوقات اس کو وہیں پہ روک کے آج کی مجلس کی حد تک تھوڑا سا سبجیکٹ چینج ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے جو سوال آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں ہر مجلس میں لاسٹ مجلس کے کچھ چیزوں کو ایکسپلین کرتا ہوں یہ وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں لوگوں نے سوال کیا ہوتا ہے لیکن ایک سوال ایسا ہے جو پہلی محرم سے مسلسل اس سے پوچھا جا رہا اور میرا ارادہ تھا کہ اس کا آج جواب دوں لیکن جب میں نے آج کی مجلس کے بارے میں سوچا کہ کیا پڑھنا ہے تو ٹائم نظر نہیں آ رہا صرف ایک اعلان کر رہا ہوں کہ آج جو کیو این اے سیشن اس میں پہلا سوال میں وہی لے کے آ جاؤں گا یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم 40 سے 45 آدمیوں نے 40 to 45 یہ سوال پوچھا ہے ایک آدمی کا سوال نہیں اور وہ ہے کہ زیارت عاشورہ ہم پڑھتے ہیں روز تو آپ نے تو پہلی مجلس میں ذرا سا ہم کو ڈسکریج کیا تھا بس یہ میں نے اس لیے کہا کہ اتنا زیادہ پریشر پڑ رہا تھا اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اس مجلس کے بعد بہت سے لوگ دوسری مجلس میں شرکت کے لیے چلے جائیں گے تو ان سے گزارش یہ ہے کہ میرا اندازہ ہے کہ کیو این اے سیشن یقیناً ان کی ویب سائٹ پر یا یوٹیوب چینل پہ کچھ دیر تو رہے گا وہاں سن لیجیے گا ان صلاتی و نسکی و محیائی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اسلام کس چیز کا نام ہے مولا کائنات نے نہج البلاغہ کے آخر میں اسلام کی ایک ڈیفینیشن بیان کی اچھا نہج البلاغہ کے آخر میں ایک اور حدیث بھی ہے وہ بھی میں ابھی کوٹ کروں گا کیونکہ وہ میرے آج کے ٹاپک کا اگلا حصہ ہے ٹوٹل سرینڈر مکمل اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو اپنے آپ کو سبمٹ کر دو وہی کرو جو اللہ تم سے چاہتا ہے ایک جملہ یہاں پہ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ یہ ایک اور مجلس بنے گی کل کی یا شاید آخری مجلس اور وہ یہ کہ اس کے لیے ٹوٹل سبمیشن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی کے پاس اتنی نالج تو ہونا کہ اس ٹائم پر اللہ ہم سے کیا چاہتا کیونکہ ہر وقت پہ نماز بھی اللہ ہم سے نہیں چاہتا ہر ٹائم پہ روزہ بھی اللہ ہم سے نہیں چاہتا ہر ٹائم پر اطاعت والدین بھی اللہ ہم سے نہیں چاہتا سچویشن چینج ہونے سے سرکمسٹانسز چینج ہونے سے احکام بدل جاتے ہیں اور اسی لیے ایک لفظ ہمارے علماء کہتے ہیں اس کو یاد رکھیے میں ذرا فاسٹ ہو جاتا ہوں ٹائم کو دیکھ کر پھر ریئلائز کرتا ہوں کہ پورا مجمع میرا ساتھ نہیں دے پا رہا ہے تو تھوڑا سلو ہو رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جتنی بھی یہ نماز روزہ جتنی بھی عبادت ہے اس کو عبادت سمجھ کے کریں عادت سمجھ کے نہ کریں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ انسان یہ نماز وغیرہ کی اتنی اس کو پریکٹس ہوتی ہے بچپنے سے کہ اس کی ہیبٹ بنتی ہے عادت اور عادت اسے کہتے ہیں کہ جسے اگر آپ چینج کریں گے تو آپ انکمفرٹیبل ہو جائیں گے کسی کو ایک خاص وقت میں چائے پینے کی عادت ہے اس کو چائے نہیں ملے گی تو پھر دنیا کے کسی کام میں اس کا دل نہیں لگے گا وہ کام کر ہی نہیں پائے گا اب میں مثالیں نہیں دے رہا ہوں ٹائم نہیں عبادت کو عادت نہ بنائیے عبادت بنائیے فرق کیا ہے عادت وہ ہے کہ آپ کمفرٹیبل ہوں گے ہی نہیں اس کو چھوڑ کر اور عبادت یہ ہے کہ نہیں جس وقت اللہ جس طرح سے آپ سے چاہ رہا اب جیسے یہ نماز ہی ہے نا یہ عادت نہ بنے عبادت بنے اس لیے اللہ نے نماز کی حالتیں چینج کر دی مثلا कुछ नमाजें आप जोर से पढ़ेंगे, कुछ आहिस्ता। ये मर्दों को मसला बता रहा हूँ, लेडीज का नमाज का मसला जरा सा मुख्तलिफ है। लेकिन वो मुख्तलिफ मसला एक और बहुत अहम मैसेज देता, भाई मर्दों के लिए लाजिम है ना, वाजिब है। मगरिब इशा और फजर की नमाज, मैं तफसील में नहीं जा रहा हूँ कि अलहम वाजिब है, जोर से पढ़ना, रुकू आहिस्ता पढ़ सकते हैं, तफसील की जरूरत नहीं। बहरहाल ये नमाजें जोर से पढ़ी जाती है, यानी आपकी आवाज निकले और जोर असर आहिस्ता पढ़ी जाती है। लेडीज के लिए हुक्म नहीं, वहां कुछ और मसाला। लेकिन उनका जो मसाला है वो इसलिए है कि औरत का हिजाब जो है वो इस वाजिब मसले से ज्यादा अहम है। और आज की रात हजरत अब्बास की रात है, हजरत अब्बास का नाम आता है तो जहन में सबसे पहले गैरत और हिजाब आता है। अब इसको मैं मौजू नहीं बना रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि और बहुत सारी बातें हैं। लेकिन खवातीन से मेरी एक रिक्वेस्ट है, और उसमें मैं एक बात और अर्ज कर दूं, अभी मैं अपने मौजू पर आया नहीं और डाइवर्ट हो गया, लेकिन एक जुमला और अर्ज कर दूं कि अभी आगे चलकर एक रिवायत जो मैं पढ़ने वाला हूं, तो अगर कोई औरत कंप्लीट हिजाब नहीं कर सकती है, वैसे तो सवाल है क्यों नहीं कर सकती, लेकिन अगर किसी वजह से नहीं, तो जितना कर ले वही गनीमत है। यानी अजा खाने में या सेंटर में आते हैं हिजाब करके आते हैं, बाद लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, यानी इन औरतों को कंडेम करते हैं कि क्या फायदा हुआ, बाहर तो स्कूल में, कॉलेज में, जॉब की जगह पर, शॉपिंग सेंटर में, मॉल में, वहां तो बेहिजाब घूम रहे, जितना हो जाए, और उसकी वजह अभी आती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर यह हिजाब कोई औरत नहीं करना चाहती है तो वो अब अजा खाने में भी हिजाब करके आ रही है तो हम उसका मजाक उड़ाएं। और ये बातें, औरत की बात तो इसलिए आ गई कि नमाज का मसला आ गया था और हजरत अब्बास का नाम आ गया था। हमारे यहाँ मासूमीन के हवाले से एक अलकाब पढ़े जाते हैं ना, बहुत बहुत मशहूर है, उसको मैं शुरू करूंगा तो फिर टाइम और लग जाएगा, लेकिन साहिब दावत नबविया व सौलत हैदरिया व इस्मत फातिमिया व हिलम हसनिया व शजाअत हुसैनिया व सब्र सज्जादिया, हर इमाम का एक टाइटल है ना, 12 इमाम तक बात पहुंचती है। लेकिन बाद बुजुर्ग उलमा कहते हैं कि इसमें एक और इजाफा करो, व गैरत अब्बासिया, अय खुदा तुझे वास्ता अब्बास से अलमदार की गैरत का। और गैरत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, ऑनर कहते होंगे, लेकिन ऑनर जरा सी मुख्तलिफ चीज है। गैरत अब्बास का तकाजा ये होता है कि मोमिन हो के मोमिना सफे अदा पर बैठ कर अहद करे कि हजरत अब्बास को कभी हम जलाल नहीं दिलवाएंगे और अपने हिजाब को मेंटेन करेंगे। वापस आ जाऊं असल मौजू पर, औरत की का हिजाब इतना अहम कि जिसकी वजह से उसके लिए तो मसला बदल गया, लेकिन हर एक के लिए तो मसला है ना। क्यों? कि दो नमाजें आहिस्ता पढ़ो, तीन नमाजें जोर से पढ़ो, इसलिए कि यह आदत हैबिट ना बने बल्कि इबादत बने। अभी अल्लाह ने कहा बोलो, बोल रहे हैं, अभी अल्लाह ने कहा खामोश हो जाओ, खामोश हो रहे हैं। इसी का नाम इस्लाम, इसी का नाम इस्लाम। जोहर और असर की नमाज आप सफर में जा रहे हैं, आपकी अगर हैबिट है 4 रकत की तो आप कहा 2 रकत पढ़ो ताकि ये हैबिट ना बने, इबादत बने। वहां 4 रकत टोरंटो में क्यों पढ़ी थी? अल्लाह ने कहा था इसलिए पढ़ी थी। और आप वैंकूवर गए घूमने के लिए 2 क्यों पढ़ी? इसलिए कि अल्लाह ने कहा था। हैबिट न बनने पाए, नमाज के अहकाम इसलिए बदलते जा रहे हैं। चले आप नमाज की हद तक तो शायद आपकी समझ में मेरी एग्जाम्पल नहीं आई, लेकिन रोजे की हद तक लोग उम्रे पे जाते हैं रमजान में, लोग रमजान के अंदर, आजकल तो बहुत बड़ी मखसूसी हो गई है, 21 रमजान 19 रमजान मस्जिद कूफा में, मौला की जरबत उसी मस्जिद कूफा में लगी, रोजा नहीं रख सकते हैं क्योंकि आपका स्टे 10 दिन से कम है। अब यह कि एक तो वैसे ही जिसको रोजे की सारी जिंदगी प्रैक्टिस है, रमजान का महीना है, रोजा ना, तो चलो यहां से न्यूयॉर्क गए वहां रोजा नहीं रखा तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, सभी लोग खाते पीते हैं। लेकिन मक्के में, मदीने में, करबला में, नजफ में, और वहां गए, काम ही इबादत है और वहां रोजा नहीं रखना, दिल नहीं मानता बहुत से लोगों का, मुसाफिर का रोजा। लेकिन इसीलिए कि ये आदत और हैबिट ना हो बल्कि ये इबादत हो। आदत जो इंसान की सारी जिंदगी की प्रैक्टिस है, इबादत सिर्फ ये देखना इस वक्त अल्लाह हमसे किस चीज की डिमांड कर रहा। और इस एक जुमले से, सिर्फ एक दूसरा जुमला कहकर वो अपना जो पहला मैंने ऐलान किया था उसको क्लियर कर दूं कि इसके लिए, इबादत के लिए, आदत के लिए नहीं, इबादत के लिए नॉलेज होनी चाहिए इस वक्त अल्लाह हमसे क्या चाहता है। और नॉलेज आपको कहां से मिलेगी? किसी सुपरमार्केट से नहीं मिलेगी, किस स्टोर से नहीं मिलेगी, वो मर्जे के घर से मिलेगी। मर्जियत कॉन्स्टिट्यूशन सामने आया। बस मैं अपने आप को रोक रहा हूं इसलिए कि आज की बातें और बहुत ज्यादा, तो टोटल अपने आप को अल्लाह के हवाले कर, जिस वक्त जो चाहे। और अगर इसमें कोई आप वाकान रोल मॉडल या क्लासिकल एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो उसका नाम अब्बास अलमदार है। आप अब्बास अलमदार की जिंदगी, पूरी जिंदगी को देख लीजिए। अच्छा, हमारे यहाँ से मेरी मुराद इंडिया और पाकिस्तान। मैं ईस्ट अफ्रीका के बारे में भी नहीं जानता और बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज में लोग आ गए। हजरत अब्बास का गुस्सा बहुत मशहूर है, नऊज़ु बिल्लाह लफ्ज अच्छा नहीं है, इसलिए इहतराम के लिए कहते हैं जलाल, एक लफ्ज इस्तेमाल होता है जलाल, लेकिन उसका मतलब वही। और हत्ता ये कि खुद आप इराक में भी जाएंगे, वो मौला से इतना नहीं डरते हैं, वो इमाम हुसैन से इतना नहीं, हजरत अब्बास जलाल। हत्ता ये कि सद्दाम के जमाने के कितने वाकयात है कि इसके जालिम तरीन बादशाह भी आप अली का और हुसैन का वास्ता देते रहे, मजाक उड़ाएंगे, अब्बास का नाम लेंगे एकदम से, जालिम जालिम जो उसके सिपाही थे। तो खुलासा यह कि बहुत अच्छा, इतना ज्यादा हजरत अब्बास के हवाले से मशहूर हो गया। ये भी देखिए हमारे यहाँ कितनी एक अपनी तरफ से दीन को समझने की गलती। एक साहब आए कहने लगे कि मौलाना मेरी बेटी शादीशुदा होगी, बहुत मुसीबतें परेशानियां, तो किसी ने मुझे मशवरा दिया है कि तुमने इसका नाम जैनब रखा है, नाम चेंज कर लो, जैनब नाम का मतलब ही मुसीबतें होती है। अरे इतना अच्छा नाम, इतना बरकत वाला नाम, जो मौला अपनी बेटी का नाम रखे, लेकिन कहा नहीं जब जैनब नाम होगा ना तो मेरा बेटा बीमार रहता है, लोगों ने कहा नाम बदल लो, तुमने इसका नाम सज्जाद रखा, सज्जाद का मतलब ही बीमारी। अब्बास अब मेरा बच्चा बहुत हाइपर है, बहुत हाइपर है, जरा जरा सी बात पे गुस्सा करता है, लोगों ने कहा तुमने गलत नाम रखा है, नाम चेंज करो, अब्बास नाम नहीं रखो, उसका नाम अब्बास। देखिए कैसी हिमाकत और नॉनसेंस और बेवकूफी वाली बातें चल रही है, लेकिन उसके अंदर बात मैं जनाब जैनब और चौथे इमाम की तरफ नहीं ले जाना चाह रहा, जनाब अब्बास का जलाल। लेकिन आप देखेंगे पूरे करबला के वाकये में कितने ऐसे मौके आए कि वाकान अगर अब्बास में इतना ही गुस्सा था तो तलवार निकालना चाहिए थी, एक बार भी तलवार ना निकाली जब तक कि आका हुसैन का हुक्म नहीं आया, जैसा हुक्म आया अब्बास ने माने, इसको कहते हैं टोटल सरेंडर, टोटल सबमिशन। जनाब अब्बास के हालात आगे चल के मैं बताऊंगा, ये तो मैंने शुरू में कहा कि जो मेरा मौजू चल रहा था मुकम्मल अपने आप को अल्लाह के हवाले कर। अच्छा अब इस्लाम खाली एक ऑर्डर नहीं देता है, फिर उसका तरीका भी सिखाता है। जैसे तबीब और डॉक्टर अगर आपकी कोई खराबी बताएगा तो इसलिए नहीं बताएगा कि वो आपका मजाक उड़ा रहा है, वो इसलिए बताएगा कि आपको पता चले कि प्रॉब्लम है, फिर वो दवा बताएगा तो आप उसकी दवा इस्तेमाल करेंगे। तो अब यहां पर इस्लाम ने कहा कि अल्लाह के हवाले कर दो, और फिर पहले से एक बात बता दी कि अगर तुम अपने आप को टोटल अल्लाह के हवाले करोगे तो इसके लिए तुम्हारे अंदर एक क्वालिटी जरूर होनी चाहिए, इसके बगैर तुम सबमिशन कर ही नहीं सकते, और वो है पेशेंस और टॉलरेंस, जिसे अरबी में सब्र कहते हैं। सब्र बहुत अहम यह चीज है, बच्चों जैसा मौजू नहीं है, बल्कि कुरान करीम ने हमें एक फार्मूला दिया कि जब कभी तुम्हें कोई प्रॉब्लम पेश आए अपने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, वस्तईनु बिसब्र वस्सलाह, अल्लाह से मदद मांगो। कौन सी मदद? जो सुबह शाम आप हर नमाज में कहते हैं इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, आए खुदा हम तेरी मदद चाहते हैं, कुरान ने कहा अगर मदद चाहते हो, वस्तईनु वही लफ्ज आया, बिसब्र वस्सलाह, तो सब्र से और नमाज से मदद चाहो। मौला सब्र किसे कहते हैं? इमाम ने कहा था रोजा, इमाम ने इसकी यही तफसीर की ना कि सब्र का मतलब रोजा, लेकिन रोजे के अलावा भी सब्र, सब्र बहुत जरूरी चीज है, इसके बगैर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। मौला ने नहजुल बलागा के आखिर में एक फार्मूला और दिया, और मौला फरमाते जो हम अहले बैत से मोहब्बत करता है, जो हम अहले बैत से मोहब्बत करता है ना, तो उसे एक स्पेशल ड्रेस अपने लिए तैयार करना चाहिए। मुख्तलिफ जगहों के लिए मुख्तलिफ ड्रेस इस्तेमाल किए जाते हैं ना, कोई समंदर में जाता है तो अलग है, कोई स्कूबा डाइविंग करता है तो अलग है, कोई जहाज से छलांग लगाता है तो अलग है, कोई किसी फैक्ट्री में काम करता है तो अलग है, हर जगह का ड्रेस। जो अहले बैत से मोहब्बत करता है वो एक स्पेशल ड्रेस तैयार करे। अच्छा अब ये किस चीज से बना होगा? जैसे अगर कोई ऐसी जगह काम कर रहा है जहां आग लगने का खतरा है तो फायर प्रूफ होना चाहिए, समंदर में जा रहा है तो वाटर प्रूफ होना चाहिए। अहले बैत से मोहब्बत करते हैं तो कौन सा ड्रेस तैयार करो? कहा सब्र का ड्रेस तैयार करो। जब तक कि तुम्हारे जिस्म पर सब्र नहीं होगा तुम अहले बैत से मोहब्बत कर ही नहीं सकते, करोगे लेकिन वो मोहब्बत जो है ना वो मुकम्मल नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारा चाहने वाला रोज आना डेली किसी न किसी प्रॉब्लम में मुब्तला होगा, कभी दुश्मन की तरफ से कभी उसके पर्सनल प्रॉब्लम। तो ये जो बहुत अहम कुरान करीम शॉर्टेस्ट सूरे के अंदर पूरे कुरान की समरी आ गई। एक ऐसा सूरा है कि पूरे कुरान की 6232 आयतें, 6232 आयतें और 114 सूरे और 30 पारे उन सब की समरी एक सूरे में आ गई, वल असरन इंसान लफी खुसर للذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, कि जब तक के सब्र नहीं होगा ना ईमान रहेगा और ना ही अमल साले रहेगा, तो ये इसके बगैर इंसान अल्लाह के हुक्म को मान भी नहीं सकता, दुनिया की टोंटिंग का निशाना बनेंगे आप, हर तरफ से मजाक उड़ाया जाएगा। और यहां पर सब्र के हवाले से एक बात मुझे अर्ज करना है, और वो ये कि इसमें एक चीज याद रखिए। अच्छा, हजरत अब्बास का सब्र, मेरा मौजू तो ये था, और लेकिन मैं देख रहा हूं कि शायद टाइम मेरे हाथ से निकल जाए, तो जुमला अभी से कह दूं कि असल में हजरत अब्बास का सब्र, लेकिन उससे पहले रुक के एक बात सुनिए, और वो ये चले मैं अपनी अब तक की मजलिस को भूल जाता हूँ, आप भी भूल जाइए, अब इस वक्त से मेरी मजलिस शुरू हो रही है, उसका मैं टॉपिक दे दूं, डू यू वॉन्ट टू बिकम ए मिलियनर, और इफ यस हाउ टू बिकम ए मिलियनर। मिलियनर भी अब कम है ना, अब तो मिलियनर भी बहुत हो गए, बिलियनर पे चले जाएगी, और उसका एक उसूल, और वह उसूल ये है। अच्छा, अब ये मिलियनर और बिलियनर किस हिसाब से, ये इस हिसाब से है कि एक तो होता है दुनिया में पैसे आना, और एक होता है आखिरत में पैसे आना। यहाँ के मिलियन या बिलियन बेकार है, क्योंकि वो छोड़कर ही जाना होंगे। वाला ने कहा ना कि तुम तो पैसा बस जमा कर रहे हो बाद वालों के लिए, लेकिन आखिरत का जो मिलियनर और बिलियनर है, अब आ जाइए, कभी कभार आदमी को एक चीज चूज करना होती, दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन लेना होता है, दुनिया का पैसा चाहिए यहां मिलियनर बनना है, कि वहां का पैसा चाहिए वहां मिलियनर बनना। मिलियनर तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई टीवी से प्रोग्राम आता था, वरना बिलियन और ट्रिलियन पे आप जाइए, यहां या वहां, कभी आदमी को चूज करना मुश्किल होता है। तो फिर क्या करेगा आदमी, ये सोचेगा ज्यादा जरूरत मुझे कहां। बहुत ही मशहूर एक रिवायत है जो मैं बहुत पढ़ता रहता हूं, टाइम नहीं है कि मैं पूरी तफसील बताऊं, खुलासा ये कि बनी इसराइल में बहुत ही गरीब फैमिली थी, लेकिन बहुत ही पॉइस भी, तमाम वाजिबात पे अमल कर रहे हैं, हर हराम से बचा रहे हैं, तकवे के आला तरीन स्टैंडर्ड पर हैं, लेकिन बाहर हालत बहुत खराब है उनकी, और वो मुसलसल दुआ मांग रहे हैं, दुआ नहीं छोड़ी मुसलसल। मासूम ने कहा ना कि दुआ का मतलब है तुम किसी के दरवाजे को नॉक कर रहे हो, कैनेडा में नहीं, यहाँ तो इज्जत पुलिस पकड़ लेगी, लेकिन हमारा इंडिया पाकिस्तान की बात करें, अब वो नॉक कर रहे हैं, फकीर आदमी खड़ा हुआ है, नॉक कर रहा है, नहीं आपने तवज्जो दी, आपको नहीं देना है उसे कुछ, लेकिन इतना वो नॉक कर रहा है कि आखिर एक वक्त में आप फ्रस्ट्रेटेड होकर उसको कुछ देते, ताकि किसी तरह मेरा दरवाजा छोड़ के तो जाए। इसी तरह आप कराची की सड़कों पर जाइए, जहां ट्रैफिक सिग्नल या ट्रैफिक लाइट होगी, वहां पे आप गाड़ी में बैठे तो खैर, अब इमाम ने मिसाल दी, दुआ इसी का नाम, अल्लाह के दरवाजे को नॉक करते जाओ, नॉक करते जाओ, नॉक करते जाओ, हत्ता यह कि अगर अल्लाह वो चीज तुम्हें नहीं भी देना चाहता तो दे देगा। अब मैंने पहले से एक बात कह दी थी कि टाइम कम है, मैं जरा फास्ट पढ़ रहा हूं, तो अगर वर्डिंग में कुछ आपको तौहीन परवरदिगार लगे तो मुझे माफ कीजिएगा। अब ये लोग दुआ नहीं छोड़ी, करीब है, सारी कोशिश कर ली, तकवा परहेजगारी दुआ कर रहे, यहां तक एक रात को शौहर ने एक सपना देखा, एक ड्रीम, एक ख्वाब देखा, फरिश्ता है, और आने के बाद कहा कि अगरचे मरते दम तक टिल डेथ तुम्हारी यही हालत रहना थी, लेकिन तुमने जो कंटिन्यूअस दुआ की तो अल्लाह ने तुम्हारी बुक ऑफ फेट को चेंज कर दिया, तकदीर बदल दी, लेकिन टोटल नहीं। अब जो तुम्हारी रिमेनिंग लाइफ, फॉर एग्जाम्पल मसलन अब तुम्हें 20 साल और रहना, खुदा ने कहा आधी जिंदगी तुम्हारी ऐसे ही गुजरेगी और आधी अच्छी होगी, बट च्वाइस तुम्हारा, अभी शुरू वाले 10 साल तुम्हें अच्छे चाहिए, पैसे वाले मिलियनर, या बाद वाले। उसने कहा कि ये डिसीशन मैं अकेला कैसे लूं, मेरे साथ मेरी वाइफ भी जिंदगी गुजार रही है, उसका भी प्रॉब्लम है, उससे मशवरा करूंगा। अब क्योंकि ये शैतान का हाथ तो है नहीं, अल्लाह का मैसेज है, फरिश्ते ने कहा मैं कल दोबारा आऊंगा, चला गया। पूरा दिन शौहर बीवी डिस्कस करते रहे क्या करना, कभी दिल में ख्याल आता था पैसे अभी मिले तो ठीक है, भाई जवानी में ही तो पैसे का मजा आता है, बुढ़ापे में पैसा मिला भी तो क्या, ना शराब पी सकते हैं, ना गाना सुन सकते हैं, ना महरम को देख सकते हैं, ना कोई और गुनाह कर सकते हैं, ताकत ही नहीं, तो पैसा अभी मिले, जवानी में मजा है ना पैसे का, बुढ़ापे में तो वैसे ही एक बिस्तर पे जाके। फिर ख्याल आया कि नहीं, जवानी है, ताकत है, शरीर के अंदर इतनी शक्ति है, गुजारा कर लेंगे, बुढ़ापे के अंदर जब कोई साथ देने वाला नहीं होगा तब ये पैसा काम आ, ये 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 ऑप्शन कौन सा ऑप्शन ले। खैर, इतना ही मुझे कहना था, ये रिवायत का इतना ही सा बताना था कि कभी ऑप्शन सामने रखा जाता है तो आदमी को डिसाइड करना मुश्किल होता है, लेकिन मुझे पता है कि आप फौरन कहेंगे कल की मजलिस में कि फिर क्या हुआ, हुआ ये कि अगली रात को जब ये सोया तो डिसीजन ले लिया शौहर बीवी ने, और वो फरिश्ता आया तो कहा कि हमें पहला जो हाफ है वो हमें अच्छा चाहिए, बाद में गुजारा कर लेंगे। अच्छा, और चूंकि
वाइस लोग थे ना, मुत्तकी लोग थे।
दस पहले 10 साल तो अब इतनी दौलत कि जैसे वो चूहे वाला वाकया जो मैं अभी पढ़ने वाला हूँ, चूहे वाला वाकया, चूहा, खैर वो अभी आ रहा है। तो इतनी दौलत, जैसे उर्दू की एक कहावत है, मिट्टी में हाथ डालो तो वो सोना बन जाए। लेकिन मेंटली प्रिपेयर्ड है, 6 साल हो गए, 8 साल हो गए, 9 साल हो गए, 10 साल होने वाले हैं, आज आखिरी रात है, कल से हमने अपने च्वाइस से ये लिया था ना, कल से गुर्बत आई। चुनाचे वो आखिरी रात को फरिश्ता फिर आ गया। अब ये समझ गया कि क्यों आया, कहा हाँ मैं तैयार हूं, मुझे कोई कंप्लेन नहीं है, मैंने खुद इसको चूज किया था। फरिश्ते ने कहा इतना घबराओ नहीं, मैं ये मैसेज लेके आया हूं कि अल्लाह ने तुम्हारे जो आखिरी 10 साल है ना, वो भी तुम्हारी किस्मत बदल दी है और यही दौलत तुम्हें रहेगी, क्योंकि तुमने जब दौलत मिली तो सिर्फ अपने आप पे खर्च नहीं की, अपने रिश्तेदारों को भी इसमें शरीक कराया है, और वालिदैन और रिश्तेदारों और नेकी के काम में जो खर्च करते हो अब उसकी बरकत से अल्लाह, अब दुआ नहीं, दुआ तो खत्म हो गई थी, अब इस नेकी की वजह से तुम्हारी बाकी जिंदगी भी राहत से गुजरेगी। लेकिन ये तो वाकई का एक पहलू था, और इसको थोड़ा कनेक्ट कर लीजिए ट्रेजर साहब की स्पीच के साथ। अब वापिस आ जाइए कि असल पॉइंट क्या था, कि कभी आदमी के सामने दो ऑप्शन होते हैं, ये लेना है कि वो लेना। और इसमें और बड़े इंटरेस्टिंग वाकयात है, लेकिन आज क्योंकि रात बड़ी अहम रात, गम का बयान भी ज्यादा होगा, कुछ हजरत अब्बास के हवाले से बात करना है, तो शॉर्ट च्वाइस आपके सामने कि बिलियनर या ट्रिलियन बनना है, अभी बनना है या आखिरत में बनना है, या भी ले लो या वहां ले लो। और अब इसमें एक बहुत अहम हदीस सुनिए, कुरान करीम का सूरह अबसा व तवल्ला, 30th पारे का 3rd सूरह, उसमें एक आयत आती है, ये आयत मौलाए कायनात की उस मुनाजात में भी है जो शब कदर में हम पढ़ते हैं, और जब कभी भी मस्जिद कूफा की जियारत के लिए आप जाते होंगे तो सारी जियारतें करा के मस्जिद में बिठा के मुनाजात अमीर मोमिनीन पढ़ाई जाती है, उसमें भी आयत यौम यफिरुल मरउ मिन अखी वह उम्मे ही वह बनी वह साहिबते कयामत का दिन वो दिन होगा जब आदमी भाई को देख के भागेगा, और आदमी उम्मे ही वह अभी बाप को देख के भागेगा कयामत के दिन, और माँ को देख के भागेगा, अलग अलग खुदा ने का उम्मे ही वह अभी वह साहिबते ही वह बनी, और अपने पार्टनर को देख के, शौहर है तो बीवी को देख के भागेगा, वो तो शायद आजकल भी भागते होंगे, और अगर बीवी है तो शौहर को देख के भागेगी, और वह बनी और अपनी औलाद को देख के भागेगा। ये आए थे कुरान के, यौम यफिरुल मरउ मिन अखी वह उम्मे ही वह साहिबते ही वह बनी भागेगा। अच्छा, अब इसका कुछ लोग ट्रांसलेशन करते हैं, कयामत में कोई किसी को नहीं पहचानेगा, गलत, ये तो आयत बता रही है पहचानेगा तभी भागेगा, पहचान रहा है कि मेरा भाई है इसलिए भाग रहा है, अगर कोई स्ट्रेंजर है तो नहीं भागेंगे, ये माँ है मेरी इसलिए भाग रहा है। वो कौन सा दिन आ जाएगा कि माँ और बाप को देख के आदमी भागे चले, वो समय औलाद को देख के भी भागे। अब यहाँ पे इमाम ने जो इसकी तशरीह की है, बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूं मिलियनर बनने का तरीका, इमाम ने फरमाया क्यों भागे, वाय अपने करीबी रिश्तेदारों को, और कयामत के दिन तो मुसीबत का दिन, मुसीबत में तो आदमी और ज्यादा अपने रिश्तेदारों के करीब होता, का इसलिए भागे कि एक मोमिन होगा, कोई एक मोमिन या कुछ मोमिन, जब उनका नामा यामाल खोला जाएगा, अब वो जो एक स्केल या तराजू का कंसेप्ट इस्लाम ने दिया उसमें रखा जाएगा, तो अब होगा ना, दो हिस्से होते हैं स्केल के, जो हमारे यहाँ इंडिया पाकिस्तान और इस अफ्रीका के पुराने स्केल, एक में नेकियां रखी जाएंगी एक में गुनाह रखे जाएंगे, वो पूरी आयती पे आयते हैं लेकिन पढ़ने की जरूरत नहीं। तो अब जिसका नेकी का पल्ला भारी हो गया, फमन यामल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रा, अगर गुनाह ज्यादा हो गए जहन्नम, और अगर नेकियां ज्यादा हो गई जन्नत। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो बिल्कुल बराबर, एक ग्राम का भी फर्क नहीं है, ग्राम भी बहुत बड़ी चीज है, उससे भी छोटा आप ले आइए कोई मेजरमेंट का, बिल्कुल बराबर। अब क्या किया जाए, जन्नत जा नहीं सकता नेकियां ज्यादा नहीं, जहन्नम जा नहीं सकता गुनाह ज्यादा नहीं, बिल्कुल बराबर हो। अच्छा, आप जो कुछ अल्लाह करेगा वो बात का स्टेज है, लेकिन पहले इसको एक ऑफर की जाएगी, ऑफर कबूल कर लेगा तो फैसला हो जाएगा, अगर उससे काम नहीं चलेगा फिर चीजें आती हैं शफात और रहमत और उसके बाद सजा भी। ऑफर क्या की जाएगी, ऑफर यह की जाएगी, देखो बिल्कुल बराबर, एक छोटी सी नेकी भी कहीं से अगर तुम लेके आ जाओ ना,
ग्राम नहीं, माइक्रोग्राम नहीं, मैंने क्या कहेंगे, इतनी सी नेकी लेके आ जाओ, ये नेकी वाला जरा सा झुक गया तुम्हें मिल जाएगी जन्नत। सारी जन्नत एक छोटी सी नेकी के ऊपर आ जाएगी उस मोमिन के लिए जिसके गुनाह और नेकियां बिल्कुल बराबर। वो कहेगा अच्छा खुदावंदा इतना आसान है, अरे पूरा कुटुंब मेरा भरा हुआ है मैदान कयामत में, वो मेरी माँ खड़ी है, वो मेरा बाप खड़ा है, वो मेरा भाई खड़ा है, वो मेरा बेटा खड़ा है, वो मेरी बेटी खड़ी है, बड़ी मोहब्बत करते थे, बड़ी दुनिया में मुझे खिदमत करते थे मुझे, ये वो नहीं है जो वालिदैन को नर्सिंग होम में दाखिल करा के आए, वाकान खिदमत की है, अरे इतनी सी नेकी तो किसी से भी मांगूंगा मिल जाएगी। कहा जाके जाओ जाओ मांगो जाके लेकर आ जाओ, फैसला अभी हो जाएगा। फिर अर्ज करूं कि अगर नहीं हुआ तो फिर और दूसरे मरहले हैं, वो कभी अलग से सुनिएगा, मौत और बरज़ख पर मेरा आशरा। तो अभी वो बात हो रही है, बहुत ईजी लगा, ये क्या बड़ी बात, कोई बड़ी नेकी भी अल्लाह नहीं मांग रहा है, छोटी सी मामूली सी नेकी। अब ये गया था हिसाब किताब देने, अब सब कयामत में देख रहे हैं, इसकी फैमिली तो पहचान रही कि अभी ये गए, होता है ना इमिग्रेशन काउंटर में आपने देखा होगा 3-4 दोस्त से, अब वो गए, इसके बाद हमारी बारी आएगी, फिर हमारी बारी आएगी, सब देख रहे हैं। ये गया और वापिस आया, वापिस आने का मतलब ये है कि नेकी मांगने आया, वरना तो वापिस नहीं आता। वापसी का मतलब, वरना तो वहां तो वही इमिग्रेशन की तरह कि निकले तो निकलो, या जन्नत में जाओ या जहन्नम में, वापिस क्यों आ रहा, सब समझ गए नेकी मांगने आ रहा है। भाई ये जो देखा तो बाप भी भागा, माँ भी भागी, भाई भी भागा, बहन भी भागी, बेटा भी भागा, बीवी भी भागी कि हमारे पास, हम अगर इसको नेकी दे दी, फर्ज कीजिए दे दी हमने, और फिर जब हमारा हिसाब किताब हुआ बिल्कुल बराबर होगा पल्ले, उस वक्त हमको ख्याल होगा काश वो नेकी इसको न देते ना तो इस वक्त हम जन्नत में चले जाते, तो उस वक्त नेकी इतनी कीमती करेंसी बनेगी, ये करेंसी है वहां की कयामत की, इसके जरिए जन्नत और जहन्नम का फैसला हो रहा है। तो एक नेकी की वजह से बाज औकात मोमिन जो है रोक लिया जाएगा, कहा जाएगा लेके आ जाओ, और वो जिसको इतना इजी समझ रहा था कि छोटी सी नेकी, मसलन मैं मिसाल दे रहा हूँ, सलाम करने में पहल कर दी किसी ने, ये भी तो एक नेकी है ना, इतनी सी नेकी मुझे दे दो जो जिंदगी में कोई एक सलाम वाली नेकी, मैं बहुत छोटी छोटी नेकियों की बात कर रहा हूँ ताकि आप किसी नेकी को कभी मिस ना करें। तो खैर खुलासा यह है कि ये जब मंजर देखे गए कि जाग गया था ये और फिर वापिस आ रहा है, तो यौम दिन या फिर मर ओ मिन अखी, इसको देख के इसका भाई भी भागा, वह उम्मही व बनी, और इसका बाप और माँ भी भागे, वह साहेब ही व बनी, और औलाद भी भागी है। तो ये नेकियां कयामत की करंसी है। अब वहां पर आपको बिलियनर बनना है या इस दुनिया में बिलियनर बनना है, यहाँ का बिलियनर बनना बेकार। अच्छा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे गुर्बत ही कीजिए, भाई हमें रिस्क की कितनी दुआएं, कर्जा अदा करने की दुआएं, हालत बेहतर बनाने की दुआएं इमाम ने बता दी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये दुनिया में बिल्कुल आप फाके कीजिए और भूखे रहिए, नहीं ये बताएं, लेकिन पहली आपकी तरजीह जो है प्रायोरिटी वो होनी चाहिए आखिरत की नेकियां। अब यहाँ के हवाले से सुन लीजिए, मैं वो कंसेप्ट नहीं दे रहा हूँ जो एक वाकया है ना बहुत मशहूर, वाकया तो नहीं है जोक है, कि मस्जिद में बैठे हुए दो आदमी दुआ मांग रहे थे, एक बहुत ही गरीब था और एक वाकन मिलियनर था। अब गरीब दुआ मांग रहा है खुदावंदा मुझे दौलत दे दे, और वो पैसे वाला मांग रहा है खुदावंदा ईमान, और उसने कहा तुम आज ईमान मांगो, ईमान दौलत क्या मांग रहे हो, कहा जिसके पास जो चीज नहीं होती है वो वही मांगता है, मेरे पास दौलत नहीं है, तुम्हारे पास ईमान नहीं है, तो ये कंसेप्ट नहीं है, दौलत भी मांगी। अब मसलन सबसे अहम इबादतों में से एक इबादत हज, हज जो है ना हज बिल्कुल एक नया मोमिन बनाती है, नया मोमिन बन के आता है मैदान अराफात से इंसान, पुराना मर जाता है क्योंकि सारे गुनाह माफ हो गए। ये जुमला मेरा नहीं है, ये पैगंबर का है कि हज करने के बाद तो यौमिन वलदत उम्मो, तुम ऐसा होते हो जैसा उस दिन थे जिस दिन तुम्हारी माँ ने तुम्हें पैदा किया, नया इंसान। हज की पहली दुआ क्या, यानी आप मक्के में दाखिल हुए ना, पहली दुआ कई बार ये बात आ गई इस्लाम में, क्या पहली दुआ बताई, अभी आयतुल्लाह सिस्तानी की हज की किताब में देख लीजिए, और हर मर्जे जो मस्जिदुल हराम के गेट पर खड़े होकर दुआ पढ़ना है, जो पढ़ के आप एंटर होंगे, वो यही दुआ है, वो औसे अलैया मिन रिज़्क़िल हलाल तय्यिब। आप मस्जिद में जा रहे हैं, पहली दुआ आपके जहन में है, इस्लाम कहता है ये दुआ मांगो, ऐ खुदा मुझे रिज़्क़े हलाल में बरकत अता फरमा, वुसअत अता फरमा, वुसअत बढ़ा दे। और आखिरी दुआ समझ लीजिए, अरफात का मैदान वो समझिए आखिरी लोग, इमाम मजलूम की एक दुआ है दुआए अरफात, क्या मास्टरपीस दुआ, आज भी दुनिया देखती है तो दंग रह जाती है कि इस तरह भी अल्लाह को पुकारा जाता। उस दुआ का आखिरी जुमले क्या, वह औसे अलैया मिन रिज़्क़िल हलाल, उस दुआ के अंदर जो कायनात की इतनी अहम दुआ,
तो ये इस्लाम का हुक्म है नहीं, दुआ मांगो रिस्क के लिए भी, लेकिन जहां पे टकराव हो जाए चॉइस किया हो। मिक़दाद का एक वाकया सुन लीजिए, जल्दी जल्दी वक्त तो बहुत गुजर गया। मिक़दाद पैगंबर इस्लाम के चार अहम तरीन सहाबियों में, अहम तरीन इसलिए मैंने कहा कि रसूल खुदा की हदीस है कि अल्लाह ने मुझे ऑर्डर दिया है कि इन चारों से मोहब्बत करो। सारी कायनात रसूल खुदा से मोहब्बत करती, कायनात तो क्या मोहब्बत करती, अल्लाह मोहब्बत करता है, पैगंबर का लक़ब ही हबीब खुदा है, अल्लाह मोहब्बत करता है और अल्लाह का ऑर्डर है चार से मोहब्बत करो, उसमें तीसरा नाम मिक़दाद का। मिक़दाद के बारे में एक दो बातें पहले भी आई थी लेकिन इस वक्त का वाकई बड़ी गुर्बत, बड़ी गुर्बत थी। उसकी वजह भी आई है कि पूरा कबीला खिलाफ था तो ये अकेले मुसलमान हुए, मदीने आए, रहने की जगह नहीं थी। पैगंबर ने कहा कि जब तक के तुम्हारा मकान नहीं बनता मेरे साथ शेयर करो मेरे रूम के अंदर। पैगंबर ने इनको शेयरिंग में रखा अपने साथ, अपने अपने हुजरे में, बड़ी मोहब्बत। तो एक मरतबा पैगंबर ने इनकी गुर्बत देखी तो कहा कि ऐ मिक़दाद तो वो दुआ क्यों नहीं पढ़ते हो, कि वो दुआ पढ़ने के बाद तो अल्लाह वह वही जो दो दिन पहले आयत पढ़ी थी ना, वह यरज़ुकु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह तुम्हें रिस्क देगा और ऐसी जगह से देगा कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वहां से मिल सकता है। आपने सोचा होगा मैंने वहां जॉब अप्लाई किया वहां से होगा, वो बिजनेस शुरू किया वहां से मुझे बरकत मिलेगी, फुला खानदान में शादी की है तो वहां से मुझे कुछ मिलेगा, लेकिन ऐसी जगह से देगा अल्लाह आपने सोचा भी नहीं होगा। वो ये वाकया पैगंबर ने कहा दुआ क्यों नहीं पढ़ते हो, पैगंबर का हुक्म इख्तदाद के लिए सर आंखों पर दुआ शुरू कर दी। अभी चंद ही दिन गुजरे थे, पुराने जमाने के अंदर ये टॉयलेट या वॉशरूम या बाथरूम घरों में नहीं होते थे, शहर के बाहर जंगल में होते थे। आज भी इंडिया पाकिस्तान में कितने ही ऐसे गाँव हैं या टाउन हैं जहाँ पे होते ही नहीं बाथरूम, बाहर जाइए खेतों के अंदर जाइए मैदान में जाइए। तो उस वक्त तो हर जगह यही तरीका था, छोटा शहरों के बड़ा, मदीना तो इतना सा शहर था। मिक़दाद सुबह के वक्त गए, फजर की नमाज से पहले आदमी वॉशरूम जाता है ना, वो वॉशरूम के लिए गए वो जन्नतुल बकी के पीछे, और वहां बैठे हुए थे और अभी जरूरत से फारिग हो रहे थे, फारिग होके उठने लगे कि देखा एक चूहा निकला जमीन से, चूहे जमीन में बिल बना के रहते हैं, बड़ा सा चूहा। और अब ये अंधेरा है, फजर का वक्त करीब आ रहा है, थोड़ी थोड़ी लाइट हो रही है, डॉन जिसे कहते हैं, लेकिन बहुत बात है, उसके मुंह में कोई चीज है, उसने मिक़दाद के पैरों के पास ला के रखी और चला गया। अब मिक़दाद हैरान है, वो फिर आया, फिर गया, फिर आया 17, पूरा रिवायत के अंदर पूरा फिगर है 17। अब जरा रोशनी बढ़ गई, मिक़दाद ने देखा ये दीनार था, दीनार कहते हैं प्योर गोल्ड से बना हुआ सिक्का, वो खाली उसकी वैल्यू नहीं होती है, उसके अंदर गोल्ड होता है, गोल्ड 17 दीनार। चूहा इनके कदमों में रख के गया, अब ये इन्होंने वो उठाया, और चूंकि ये अभी तो फजर की नमाज का टाइम है ना, मस्जिद जाना है इनको, ये इसीलिए आए थे कि पेशाब वगैरह से फारिग होके मस्जिद जाएंगे। मस्जिद में गए, रसूल के पीछे नमाज पढ़ी, कहा या रसूल अल्लाह आज सुबह तो बड़ा अजीब वाकया हुआ, वो एक चूहा मेरे पैरों के पास जमीन से 17 दीनार लेके आया। पैगंबर ने फरमाया कि क्या तुमने जमीन खोदी थी, कहा नहीं खोदी, क्या तुम उसके अंदर हाथ वगैरह डाल के निकाले, नहीं वो खुद ही लेके गए। पैगंबर ने कहा ये तुम्हारे लिए हलाल है, ये अल्लाह ने तुम्हें दिलवाया है, ना इसके ऊपर ज़कात है ना इसके ऊपर खुम्स है, अपने घर में इस्तेमाल करो और फिर इसकी बरकत देखो। वो 17 दीनार से इन्होंने बिजनेस शुरू किया, पहले तो इनके पास आधा दीनार क्या चौथाई दीनार रोटी के पैसे नहीं थे, अब एक इन्वेस्टमेंट हो गया ना, एक कैपिटल आ गया ना, तो इतनी बरकत हुई कि इनकी बीवी कहती है कि इसके बाद कभी भी हमने अपने घर में गुर्बत नहीं देखी है। और ये वाकया जो है ना फिर बाद में कोर्ट होता कि अगर आपको भी इस तरह जमीन से कोई नजर मिल जाए तो खुम्स है कि नहीं है, फिकी मसले। अब सवाल ये है कि दुआ किया, क्योंकि मेरा मौजूद दुआ नहीं, मेरा मौजूद तो ही वाकया था कि जी वो पैगंबर ने कहा कि भाई तुम क्यों नहीं दुआ मांगते अपनी हालत अच्छी होने की, लेकिन अगर मैं आगे वो दुआ ना बताऊंगा तो फिर आप हजरात कम अज कम 50 सवाल तो करेंगे, और दुआ बहुत छोटी सी। पैगंबर ने सिर्फ ये कहा था माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अच्छा आप ये याद कीजिएगा, ये कौन सी दुआ, छठे इमाम की एक हदीस है ना कि मुझे हैरत है उस मोमिन पर जिसे अल्लाह ने 4 आयतें दी हैं, जिनमें से हर आयत का एक, हर आयत जो है उसका एक बेनिफिट है, और मोमिन ये आयतें नहीं पढ़ता और कंप्लेन करता है। और पहली यही आयत थी कि मोमिन रिस्क की कंप्लेन करता है, गुर्बत की कंप्लेन करता है, जबकि कुरान में ये आयत आई है माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और इमाम बता रहे हैं कि इसका रिस्क से क्या ताल्लुक है। ये सूरह कहफ की आयत, सूरह कहफ वो सूरह है जिसकी शुरू की 5 आयतें आका हुसैन के कटे सर ने बाजार कूफा में तिलावत की, उसमें आगे चल के आए, आयत के फौरन बाद अल्लाह कहते हैं माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह फअसा रब्बी अन युतीना खैरा। ये मैं पढ़ूंगा
تو یقین ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ مجھے دولت عطا کرے گا. یہ وہی اعلان ہے ہاتھ کے ہاتھ, جہاں آیت ہے وہیں پہ یہ اعلان ہے. چھٹے امام نے بھی یہ بتایا. بلکہ آپ کو یاد ہوگا ایک بہت مشہور عمل ہے امام زمانہ کا کہ مشکلات میں یا فتح والا عمل کیا کرو. مفاتیح الجنہ میں نماز فجر کے اعمال میں لکھا. میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میرا تو پتہ نہیں کیسے میں مجلس آج مکمل کر پاؤں گا. تو خلاصہ یہ ہے مفاتیح, ان بڑے عالم کا واقعہ ہے نا کہ جو انتہائی پریشانی میں تھے اور پھر امام زمانہ کے خیمے میں پہنچے اور امام نے ان کو ایک دعا بتائی جو یا فتح سے شروع ہوتی اور اس کے اندر یہ آیت آئی ہے, اسی دعا کے اندر یہ آیت بھی ہے. تو رسول خدا نے مقداد کو یہ آیت بتائی, چھٹے امام نے اپنے ہر شیعہ کو یہ آیت بتائی, امام زمانہ نے پریشانی کے عالم میں اپنے مومن کو یہ آیت بتائی ہے. کتنی مختصر, ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اب یہ کیوں بتایا جا رہا کہ اسلام پسند نہیں کرتا کہ ہم غربت میں ہی زندگی گزارے, لیکن اگر کبھی چوائس ہو کہ یہ یہاں لو تو وہاں دو, تو آخرت کے اندر ایک چھوٹی سی نیکی بھی اتنی کام آئے گی آپ کے, اور جتنی نیکیاں کریں گے سمجھیے فوراً آپ کے اکاؤنٹ میں, بینک اکاؤنٹ میں ہوتا ہے نا کوئی آپ کو پیسے دیتا ہے تو پہلے تو 2 دن لگتے تھے, 4 دن لگتے تھے اس کے اندر آنے میں, اب تو فوراً سیکنڈوں میں آ جاتا ہے. ادھر نیکی کریں گے آپ کا آخرت کا اکاؤنٹ بڑھ گیا, اور نیکی کریں گے آخرت کا اکاؤنٹ بڑھ گیا. تو ٹوٹل سبمیشن اللہ کا ہو تو سوال یہ کہ کیوں, وائے؟ اس لیے کہ یہ چھوٹی سی نیکی عورت نے اپنے 2 بال چھپا لیے اور قیامت میں جو اس کا اکاؤنٹ چل رہا ہے, اس وقت اللہ نے اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے قیامت کے بینک میں, ہر ایک کا ایک اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے, اس میں کریڈٹ سائٹ بھی ہے, اس میں ڈیبٹ سائٹ بھی ہے. ہماری ڈیبٹ سائٹ ہے زیادہ بھر رہی ہے, لیکن جو چھوٹی سی نیکی کرے اسی وقت اس کے اندر وہ جمع ہو جائے گی اور قیامت میں ملے گی. اور اس کی بہترین مثال, نہیں یہ لفظ یہاں پہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا, لیکن اس کی ایک اہم ترین مثال ہمارے سامنے خود عباس علمدار. عباس علمدار کا لقب ہے باب الحوائج. باب الحوائج, باب الحوائج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کے دروازے پر ہر حاجت پوری ہو جائے. دوسرا لقب ہے باب المراد, جس کے دروازے پہ ہر مراد پوری ہو جائے. یہ عباس, پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ عباس ہیں کون. عباس کا قد کتنا زیادہ تھا, ہائٹ ہر ایک کو معلوم ہے, اور عباس کا چہرہ کتنا نورانی تھا. بنی ہاشم ویسے ہی عرب میں سب سے خوبصورت مانے جاتے ہیں, اور اس بنی ہاشم میں عباس کا ٹائٹل تھا قمر بنی ہاشم. یہ بنی ہاشم کا چاند ہے, جو آلریڈی اتنا خوبصورت قبیلہ ہے اس کے چاند ہے. لیکن پھر اگر آپ ایک اور حدیث کو اس سے ملائیں تو اور زیادہ سمجھ میں آتا ہے عباس کا, عباس کے فزیکل فضائل. روحانی تو اپنی جگہ ہے, فزیکل فضائل. پیغمبر کی ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے, ایک نہیں, 1, 2, 3, 4 چار ریفرنس تو میرے سامنے اس وقت اہل سنت علماء کی کتابوں کے آ رہے ہیں. کیا حدیث ہے؟ من ارادہ ان ينظر. اچھا صرف پہلا لفظ جو ہے نا, ایک حدیث میں من ارادہ ہے, ایک میں من احبا. ترجمہ کیا ہے کہ جو یہ ارادہ کر رہا ہے, جس کی یہ انٹینشن ہے, یا جو یہ پسند کرتا. اب کیا باقی حدیث ایک جیسی, ان ينظر الى اسرافیل فی حیبته ومیکائیل فی رتبته وجبرائیل فی جلالته وآدم فی علمه ونوح فی فهمه وابراہیم فی خلته ویعقوب فی حزنه ویوسف فی جماله وموسی فی هیبته وایوب فی صبره ویحیی فی زہده ویونس فی ورائه وعیسی فی عبادته فلینظر الی وجه علی ابن ابی طالب. جس کا یہ ارادہ یا انٹینشن ہے, یا جو محبت کرتا ہے کہ وہ اسرافیل کو اپنی حیبت میں دیکھے, یہ روایتوں کا لفظ ہے, تمام فرشتے بھی اسرافیل کو دیکھ کے بہت زیادہ ڈرتے, کیونکہ ان کو پتا یہی ہے کہ جو سور پھونکے گا یا بغل تو قیامت آئے گی. اور بہت ساری روایتیں بھی ہیں, لیکن اسرافیل میرا موضوع نہیں ہے. یہ ہے کہ اسرافیل کے ساتھ پیغمبر نے یہ لفظ کیوں کہا. وہ میکائیل فی رتبتہ, اور جو چاہتا ہے کہ میکائیل کو ان کے رتبے کے ساتھ دیکھے جو لوگوں کو رزق دیتے حکم خدا سے. وہ جبرائیل اپنی جلالتے ہی, اور جبرائیل کو دیکھے ان کی عظمت اور گریٹنس کے ساتھ, آدم کو دیکھے ان کے علم کے ساتھ, نوح کو دیکھے ان کے فہم کے ساتھ, ابراہیم کو دیکھے ان کی دوستی کے ساتھ, موسیٰ کو دیکھے ان کی حیبت کے ساتھ, ایوب کو دیکھے ان کے صبر کے ساتھ, یعقوب کو دیکھے ان کے غم کے ساتھ, یوسف کو دیکھے ان کے حسن و جمال کے ساتھ,
यहिया को देखे उनके जोहद के साथ, यूनुस को देखे उनकी परहेजगारी के साथ, ईसा को देखे उनकी इबादत के साथ, तो वो अली के चेहरे को देखे। और अब्बास के बारे में रिवायत है कि अब्बास शबी अली इब्ने अबी तालिब थे, यानी अब्बास को देखने का मकसद है कि जिब्राइल का चेहरा देखा, इसराफील का चेहरा देखा, मीकाईल का चेहरा देखा, आदम को देखा, नूह को देखा, इब्राहिम को देखा, मूसा को देखा, अय्यूब को देखा, याकूब को देखा, यूसुफ को देखा, यहिया को देखा, यूनुस को देखा और हजरत ईसा को देख लिया। ये अब्बास के चेहरे की अजमत। खाली मैं इस वक्त फिजिकल अब्बास के फजाइल बयान कर रहा हूं, तो मामूली शख्सियत नहीं है अब्बास की। हम अब ये अब्बास, क्योंकि हमारे यहां हजरत अली अकबर के लिए बहुत मशहूर है, सही मशहूर, शबी है रसूल खुदा, शबी है। हजरत अब्बास के इस पहलू पे निगाह कम जाती है, मगर ये तो हजरत अब्बास की जाहिरी खसूसियात भी हैं, जो फिजिकल अपीयरेंस है उसके अंदर और भी कई चीजें, टाइम इस वक्त अब नहीं रहा। दूसरी जानिब आई, अब्बास का स्टेटस इतना ही है कि जो टाइटल इमाम मासूम का वो हजरत अब्बास का कन्फर्म है। अब आजकल बाज उलमा, बाज जाकिरीन अपनी तरफ से बाबुल हवाइज की एक लिस्ट बनाते हैं कि ये भी बाबुल हवाइज, ये भी बाबुल हवाइज, वो होंगे सब, लेकिन रिवायतों में सिर्फ दो के बारे में आया, एक साथ में इमाम है बाबुल हवाइज और एक अब्बास अलमदार है बाबुल हवाइज। जो एक मासूम इमाम का टाइटल है, सातवें इमाम का दरवाजा हाजतें पूरी होती है, वही टाइटल हजरत अब्बास अलमदार का है, क्योंकि इस दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ नहीं पलटा। बल्कि एक जुमला बहुत डरते डरते कह रहा हूं कि शायद कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग रहो, कि जो अली और हुसैन के दरवाजे पे भी ना मिले वो अब्बास के दरवाजे पे मिल जाता। अब ये याद रखिए, दो चीजें मैं बता रहा हूँ मेरे मौला के बारे में है कि वो वजहुल्ला, चेहरा उनका अल्लाह का चेहरा, और आका अब्बास का टाइटल है जो अल्लामा मजलिसी ने उस जियारत में लिखा है जो मफाती में, वजहुल हुसैन, अब्बास हुसैन का चेहरा हूँ। यानी अगर अल्लाह तक जाना है तो अली के जरिए जाना होगा वो वजहुल्ला, और हुसैन तक आना है तो अब्बास के जरिए आना पड़ेगा क्योंकि ये वजहुल हुसैन। और आज भी अगर आप जाइए करबला और आप खेमा गाँव में जाके आका हुसैन के खेमे की जियारत करना चाहें, पहले अब्बास के खेमे से गुजरना पड़ेगा। बिल्कुल शुरू में अब्बास का खेमा है, जैसे चौकीदार, ये लफ्ज अच्छा नहीं है, एक पहरेदार खड़ा हुआ, यहाँ से गुजरो, यहाँ से इजाजत मिलेगी तब अब्बास तक जाओगे। लेकिन ये अब्बास को जो बाबुल हवाइज का टाइटल मिला, इसका एक रीजन उलमा ने लिखा, और ये वही मेरा मौजू है कि हम और जो मेरा मौजू चल रहा है टोटल सबमिशन। भाई आज का एक नौजवान आज के इतने दिलचस्प और मजेदार गुनाहों को, एंटरटेनमेंट को छोड़कर क्यों मसलन मफाती पढ़ने लगे, मसल बतौर मिसाल कह रहा हूँ, वरना इस्लाम तो इसका कायल नहीं है ना कि मुसल्ले पे बैठी हो, क्या चीज है वो। हजरत अब्बास की जिंदगी में अब्बास को बाबुल हवाइज, अली अकबर को नहीं कहा गया, हजरत अली असगर को आज कुछ लोग कहते हैं, लेकिन वो तो 6 महीने के जाहिरी एतबार से मासूम बच्चे थे, वो केसी अलग। हजरत अब्बास का सबसे बड़ा इम्तिहान करबला में क्या था, सबसे बड़ा इम्तिहान, सबसे बड़ा इम्तिहान अब्बास का ये था कि अब्बास की पूरी जिंदगी की एक हाजत थी, हमारी हाजत मैंने दुआ, हम और आप दुआ मांगते रहते हैं, कोई 5 साल दुआ मांगे, कोई 7 साल, कोई 10 साल, कोई 2 साल, मसाला हल हो गया तब भी है, नहीं हल हुआ तो वो थक कर दुआ छोड़ देता। मगर अब्बास की एक दुआ थी जो पैदा होने से लेके करबला में असर आशूर तक अब्बास मांगते रहे, और इसलिए मांगते रहे, अब्बास की तौहीन नहीं कर रहा, इसलिए मांगते रहे कि अगर अब्बास कभी भूल भी जाए तो जितने अब्बास के चारों तरफ है सब अब्बास को याद दिला देते। और वो क्या दुआ थी, ये थी कि जब मेरे बाबा ने मेरी माँ से शादी की थी तो उस वक्त ये कहा था कि ये शादी तो मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि मुझे अपना वो बेटा चाहिए जो करबला में मेरे हुसैन की मदद करे। और ये अब्बास पहले दिन से सुन रहे, जैसे मैंने एक मुहावरा ने जुमला कहा कि अगर अब्बास कभी भूल भी जाए तो दूसरे लोग नहीं भूलने देंगे, क्योंकि मौला अली के जो सहाबी अब्बास को जब देखते, मैं बात नहीं कर रहा हूँ बड़े होने के बाद, अभी अब्बास 6 महीने के, अभी अब्बास 1 साल के, अभी अब्बास 2 साल के, जो अब्बास को देखते, अच्छा ये वही अब्बास है जिसको अली ने करबला के लिए मांगा था। घर में आते हैं तो ज़ैनब हो के, कुलसूम हो के, लैला हो के, जितनी ख़वातीन सबको याद है कि शादी क्यों हुई थी, हर एक याद दिलाता, और फिर बाकी बातें तो छोड़े, हत्ता करबला की शब आशूर भी अब्बास को ये याद दिला दिया गया। मैं फिर कह रहा हूँ कि याद दिलाने का मकसद तौहीन अब्बास नहीं हो, भूले नहीं, लेकिन मुसलसल एक चीज जो है अब्बास के सामने। 9 मुहर्रम को यजीद की तरफ से तो जंग शुरू हो गई, ये आशूरा हुसैन ने बनाया है, वरना तो असल में तासुआ था। 9th of Muharram को तासुआ कहते। जंग शुरू हो गई थी, तीर चला दिया था हमारे साथ। अब्बास को भेज के मोहलत मांगी गई ना, जाओ जाकर एक रात की मोहलत लेके आओ। अच्छा ये भी देखिए कितना बड़ा इम्तिहान, अब्बास से अगर कहें कि जाओ और उमर साद का सर काट के ले आओ, अब्बास के लिए बच्चों का खेल, मगर मेरे मौला का कातिल और दुश्मन में उसके सामने जाकर वो जुमला कहूं जो बजाहिर रिक्वेस्ट लगे, बहुत बड़ा इम्तिहान है। इसी का नाम इस्लाम, अपनी ख्वाहिश नहीं, जो इस वक्त हुक्म है खुदा। लेकिन अब्बास को भेजा था हुसैन, साथ में अपने दो बुजुर्ग सहाबियों को भी भेज दिया। ये वो सहाबी हैं जो मौला अली के सहाबी, इसलिए अब्बास से अलमदार इनको हमेशा चचा कहते हैं। एक हबीब इब्न मुजाहिर, एक बुरैर हमदानी, बल्कि सही मानों में तो ये रसूल खुदा के सहाबी। तो अब्बास इनका बड़ा एहतराम करते हैं, जिसे कहा तुम भी जाओ, जवान खून है, हो सकता है उमर साद या उसका कोई सिपाही ऐसी कोई बदतमीजी कर दे कि अब्बास को जोश आ जाए। बुजुर्ग साथ जाए, जरा समझाने वाला, रोकने वाला, गए। अब अब्बास को बहरहाल हमारे यहाँ मशहूर हो गया है कि हर चीज में गुस्सा करते थे, नऊज़ु बिल्लाह, ये जलाल था, लेकिन अब्बास हुक्म इमाम के पाबंद है, गए और आ गए। अब जब वापस आ रहे हैं तो अब ये दोनों बूढ़े जो नौजवान इस मजमे में बैठे हैं, उनका एक एक्सपीरियंस होगा ना कि जहाँ आपके खानदान के, आपकी फैमिली के दो बूढ़े जमा हो जाए, बहुत बोर होते होंगे, वो अपने बचपने की बात छेड़ देते, वो अपनी जवानी के किस्से छेड़ देते, आपको क्या उससे इंटरेस्ट के 50 साल पहले क्या हुआ, एक तरीका है बुजुर्गों का। ये दोनों बूढ़ों ने आपस में बात शुरू कर दी, लेकिन ये वाली बात हमारे बूढ़ों की तरह नहीं है, ये बाकायदा सोच समझ की। हबीब ने कहा, बुरैर याद है कि जब मेरे मौला ने अब्बास की माँ से शादी की थी उस रात को क्या कह रहे? बुरैर ने कहा कि वो कैसे भूल सकते, यानी असल जुमला तो ये था कि आदमी अपनी शादी में भूल सकता हूँ, लेकिन मौला की वो शादी कैसे भूलूंगा। याद है क्या कह रहे थे अली? हाँ कह रहे थे मैं करबला के लिए बेटा चाहता हूँ। अब ये दोनों बूढ़े पुरानी बात कर रहे हैं, पुरानी, बहुत पुरानी, लेकिन अब्बास समझ गए। अतशज्जअनि या अम्मी, चचा हबीब क्या आप मुझे जोश दिला रहे हैं? अरे अभी आका से इजाजत लेके आइए, कल शाम से पहले कूफे के दारुल हमारा पर हुसैन को अलम लहरा दूंगा। यानी अब मेरे कहने का मकसद यह कि जिस दिन से अब्बास दुनिया में आए, शब आशूर तक अब्बास को याद दिलाया जा रहा। वैसे तो अब्बास को खुद याद है, लेकिन याद दिलाया जा रहा कि तुम्हें करबला के लिए मांगा गया, और पता क्या चला? सबको करबला में तलवार चलाने की इजाजत मिली, जिसको करबला के लिए मांगा गया था उसी पे पाबंदी लगा दी गई, तुम तलवार नहीं चला सकते। देखिए अली अकबर के लिए क्या है कि हुसैन ने अकबर को करबला के लिए मांगा? नहीं। क्या कासिम के लिए है कि करबला के लिए मांगा? नहीं। क्या औनो मोहम्मद के लिए? नहीं। लेकिन हर एक को कहा, हुसैन ने इजाजत दे दी, और अब्बास जो करबला के लिए बनाए गए थे उन्हीं से कहा गया कि तुम्हें। अब्बास की कब से तमन्ना थी कि वो वक्त आए जिसके लिए मेरे बाबा ने अल्लाह से दुआ की थी और मेरी माँ से शादी की थी, तो मैं तलवार चला के दिखाऊं कि मैं अली का वारिस हूं, और कहा तुम तलवार नहीं चला सकते। सबसे बड़ी जिंदगी भर की अब्बास की हाजत थी, अब्बास ने हुक्म इमाम पे कुर्बान कर दी, अपनी हाजत छोड़ दी, अपनी दुआ, अपनी मुराद नहीं, हुक्म इमाम आ गया, मैं अपनी मुराद नहीं मांगूंगा। अल्लाह ने कहा, अब्बास तूने मेरी खातिर इतना बड़ा इम्तिहान दिया है, अब कयामत तक जो तेरे नाम पर अपनी कोई हाजत और मुराद लेकर आएगा, तेरी इस कुर्बानी के नतीजे में उसकी मुराद पूरी की जाएगी। बस एक पैगाम एक जुमले में आपके लिए, आप भी अल्लाह के लिए कुछ चीजें सेक्रीफाइस करना सीखिए, और फिर देखिए कि बदले में अल्लाह कितना देगा। और अब्बास देखिए, ये बहुत बड़ा अब्बास का इम्तिहान, बनी हाशिम के जितने नौजवान है ना, इन सबको तलवार चलाना किसने सिखाई? इन सबको जंग की ट्रेनिंग किसने दी? ये सब अब्बास की गोद के खेले हुए, अब्बास ने इनको पाला है, अब्बास की गोद के पाले हुए, चाहे अकबर हो, अकबर को भी अब्बास ने ही पाला भी है, तलवार चलाना भी सिखाई, चाहे वो कासिम हो, चाहे वो औन हो, चाहे वो मोहम्मद हो, बनी हाशिम का जो बच्चा भी इस एज पर पहुंचता था अब्बास की शागिर्दी में दिया जाता था। और अब्बास ये मंजर देख रहे कि सुबह से बहर हो गई, मेरी गोद के पाले हुए मेरे अपने छोटे मेरे अपने शागिर्द वो तो जा रहे हैं मख्तल में, मेरा काम सिर्फ इनके लाशें उठाना, मुझे इजाजत नहीं मिल रही। चुनाचे तारीख में यह है कि जब मौला ने अली अकबर को भेजा, सबसे पहला करबला का शहीद है ये, कल मैं बताऊंगा, यानी बनी हाशिम का पहला शहीद, तो सबसे पहले अब्बास गए थे, कहा मौला पहले मुझे जाने दीजिए। कहा नहीं अब्बास, तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार, तुम्हें कैसे जाने दूंगा। अब जो शहजादा जाता है पहले अब्बास आते हैं, मौला मुझे इजाजत दीजिए। हुसैन वही जवाब देते हैं, तुम मेरे लश्कर के आलमदार। यहां तक कि एक वक्त में अब्बास ने तड़प के कहा, मौला अपनी गोद के पालुओं के लाशें नहीं उठाए जा रहे, मौला कैसे इनके लाशें उठाऊं, मुझे जाने दीजिए। नहीं अब्बास, तुम मेरे लश्कर के आलमदार। फिर वो वक्त आ गया सेपहर का कि जब मेरे मौला ने ये जवाब दिया, अब्बास तुम मेरे लश्कर के आलमदार हो, तो अब्बास ने पलट के कहा, लेकिन मौला वो लश्कर रहा कहां, वो लश्कर रहा कहां जिसका मैं आलमदार हूं, मेरे तो सारे सिपाही कौसर के किनारे मेरा इंतजार कर रहे हैं। मौला ने कहा, नहीं अब्बास तो मेरे बाबा की भी निशानी हो, तो मैं नहीं जाने दूंगा। अब सुनिए, अब्बास हर एक की हाजत पूरी करते, इस वक्त अब्बास की हाजत कौन पूरी करे वो भी सुन लीजिए। आका ने, अब्बास तुम मेरे बाबा की निशानी, तो मैं नहीं जाने दूंगा। अब्बास बड़ी मायूसी के आलम में उस खेमे में आए जो आज भी खेमा गांव में बिल्कुल शुरू में मौजूद है, कि एक बार नन्नी सकीना आ गई। और नन्नी सकीना आने के बाद कहती, चचा ये बच्चे मेरे पास अभी आए थे और कह रहे थे कि तुम मुश्किल कुशा की पोती हो, प्यास बहुत बढ़ चुकी है, क्या कहीं से पानी का इंतजाम नहीं कर सकते। चचा मैंने उनसे वादा कर लिया कि मैं पानी ला रही हूं। देखिए एक तो होता है ना कि उम्मीद दिलाई, देखो मैं कोशिश करती हूँ, नहीं मैंने वादा कर लिया, और ये वादा तेरे भरोसे पे किया, मुझे पता है कि मेरा चचा पानी ला सकता है, मैंने बच्चों से वादा कर लिया। एक जुमला और सुन लीजिए जो मुझे शबे आशूर पढ़ना था लेकिन अब मैं अभी पढ़ रहा, और ये वादा खाली सकीना ने नहीं किया, और यकीन के साथ, मैंने कहा ना होता ना कि आप एक काम कर दो, आप कहते हैं ठीक है कोशिश करेंगे, नहीं यकीन, अब्बास पे यकीन है सकीना को, लेकिन इससे पहले शब आशूर का यकीन भी देख लीजिए। शब आशूर के मसाइब में जुमला आता है, मेरे उस्ताद पढ़ा करते कि आधी रात के बाद ये सारी बीबियां ज़ैनब कुबरा के खेमे में आई, और आने के बाद कहा, शहजादी हम कल के जिहाद के लिए तैयार है, हर एक अपनी औलाद को तैयार कर रही, बस हमें फिक्र और परेशानी सिर्फ अपने हिजाब की है कि हमारा हिजाब कल महफूज रहेगा कि नहीं। ज़ैनब ने बीवियों से कहा भी आती, और सीधा अब्बास के खेमे में गई। अब्बास घबरा के खड़े हुए, शहजादी आपने क्यों जहमत की, गुलाम को बुलाया होता। ज़ैनब ने कहा, अब्बास तुम मेरे छोटे भाई हो, बहन तो भाई के पास आती है, और इसलिए आई कि इस वक्त बीबियां मुझसे कह रही हैं कि उनके हिजाब का क्या होगा, मेरा जवाब तेरे जवाब पर है। अब्बास ने एक बार सर हाथ जोड़ के सर झुका के कहा, शहजादी जब तक आपका अब्बास जिंदा है किसी बीबी की चादर को कोई हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन अब क्या हुआ, अब हुआ क्या, क्या ज़ैनब ने पलट के बीबियों से यह कहा कि जब तक मेरा अब्बास जिंदा है। नहीं, ये नहीं कहा। ज़ैनब ने यकीन के साथ कहा, बीबियों बेफिक्र हो जाओ, अली की बेटी तुमसे वादा करती है, तुम्हारी चादरें महफूज है, क्योंकि अब यह ज़ैनब को यकीन है कि इस दुनिया में तो कोई पैदा नहीं हुआ जो अब्बास को मार सके। वो ज़ैनब का यकीन था कि यकीन के साथ वादा किया, यह सकीना का यकीन था। चचा मैंने बच्चों से वादा कर लिया है। अब्बास ने एक मरतबा कहा कि सकीना बेटी मैं तो अभी पानी ले आऊं, लेकिन आका इजाजत नहीं दे रहे। अब सकीना का वो इम्तिहान शुरू हुआ, एक बार कहा, चचा इतनी सी बात, आज तक बाबा ने मेरी बात टाली नहीं है, आइए मैं आपकी सिफारिश करती हूं, दुनिया भर की हाजतें अब्बास पूरी करे, अब्बास की हाजत हो तो सकीना पूरी करे। अब्बास खुशी के आलम में सकीना को लेके हुसैन के खेमे में गए। हुसैन इमाम वक्त हैं, हुसैन इमाम मासूम हैं, कुछ कहने की जरूरत पेश नहीं आई, देखा अब्बास सकीना को लेके आ रहे हैं, समझ गए कि अब्बास क्यों आ रहे हैं। कहा, अब्बास अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, अब मेरी सकीना ने सिफारिश कर दी, लेकिन पलट के शायद सकीना को देखा हो और एक जुमला कहा, सकीना बेटी अभी चचा की सिफारिश कर रही है, बाद में यही चचा बहुत याद आएगा जब तमाचे लग रहे होंगे, जब कोड़े पड़ रहे होंगे, यही चचा बहुत याद आएगा। अब्बास को इजाजत मिल गई, और अब्बास बहुत जल्दी में क्यों, कहीं ऐसा ना हो कि इजाजत वापस ले ली जाए, इसलिए फौरन घोड़े पे सवार होकर चलने लगे। अब वही हुआ, हुसैन ने कहा, अब्बास कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ। घबरा गए अब्बास, क्या हुक्म वापस हो रहा, मौला आपने तो इजाजत दी है। कहा, वो इजाजत मैंने दी, मगर तुम मख्तल नहीं जा सकते जब तक कि ज़ैनब से इजाजत लेके ना जाओ। अल्लाह, 55 बरस की बूढ़ी बहन जिसने 34 साल के भाई को बच्चों की तरह पाला, उसके सामने अब्बास पहुंचे और हाथ जोड़ के कहा, शहजादी अब मुझे भी मरने की इजाजत दी। ज़ैनब ने सर से पैर तक अब्बास को देखा, कहा अब्बास जब मुझे बाबा याद आता था तो मैं तेरा चेहरा देख लिया करती थी, लेकिन जाओ मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी क्योंकि नाना के दीन के लिए ज़ैनब हर कुर्बानी देने को तैयार, जाओ। बस जाते जाते एक बात सुन लो, एक दिन कूफे में बाबा के पास बैठी थी, बाबा की निगाह मेरे हाथों पे पड़ी, बाबा रोने लगे। मैंने घबरा के पूछा, बाबा बाप तो बेटियों को देख के खुश होते हैं, आप रो रहे हैं? कहा, ज़ैनब यही शहर जिसमें तू आज शहजादी बन के बैठी है ना, इसी शहर में कैदी बना के लाई जाएगी, सर पे चादर नहीं होगी, हाथों में रस्सियां होंगी। बाबा की बात पे यकीन तो था लेकिन दिल में ख्याल आया, जिस बहन का एक भाई हो कोई उसकी चादर पे हाथ नहीं डालता, मेरे तो 12 भाई और अब्बास जैसा मेरा भाई है, लेकिन अब्बास अब जब तुम जा रहे हो, ज़ैनब को यकीन हो गया, वो वक्त आ गया है कि चादर भी छिनेगी रस्सी भी बंधेगी। और अब्बास चले, अब क्या जिहाद बयान करूं मुश्किल कुशा के बेटे का, वारिस का। अब्बास चले, एक जुमला बाद उलमा पढ़ते हैं, तारीख में मुझे नहीं मिला लेकिन बिल्कुल सही होगा, अब्बास चले। चूंकि अब्बास दरिया की तरफ जा रहे हैं तो पूरी 30,000 की फौज ने अब्बास को घेरे में लिया और अब्बास तलवार चला रहे हैं, या बाज़ उलमा ने लिखा हुसैन ने तलवार दी ही नहीं थी, नैजा दिया। फिजा दर खेमा पर खड़ी देख रही है अब्बास का जिहाद। आवाज दी, शहजादी ज़ैनब जब मैं आपको आपके बाबा के हालात सुनाती थी कि आपका बाबा खैबर में कैसे लड़ा, ओहद में कैसे लड़ा, तो आप पूछा करती थी कि काश मैं भी वो मंजर देखती आंखों से, आइए दर खेमा पर, आज अब्बास जंग नहीं कर रहे, ये खैबर में हैदर कर रहा और जिहाद कर रहे। और मुख्तसर ये कि पूरे लश्कर को चीरते हुए फुरात के किनारे गए। बावफा अब्बास प्यासा रहा, पानी हाथ में जरूर लिया ये बताने के लिए कि देखो पानी पे हमारा कब्जा है, लेकिन फिर पानी फेंका वापस आ। और उधर खेमे के दरवाजे पे सकीना ने बच्चों को जमा किया हुआ, सारे बच्चों से कहा कूजे लेके आओ, मेरा चचा वादा करके गया है, आज तक मेरे चचा ने अपना कोई वादा तोड़ा नहीं है। अब बच्चों को अब्बास तो नजर नहीं आ रहे, 30,000 का लश्कर, अलम नजर आ रहा है, सबकी निगाहें अलम पर है। देखा अलम गया, दरिया तक गया, वापस आने लगा। अब बच्चे खुश हो रहे हैं कि एक बार देखा कि ये अलम जो है राइट साइड पे इस तरह झुका जैसे गिरने वाला, ये अब्बास का सीधा हाथ कट गया। बच्चों के दिल धड़के, अलम संभल गया। थोड़ी देर और गुजरी, देखा कि ये अलम बाई तरफ झुका, फिर बच्चे परेशान हुए, अलम संभल गया, फिर देखा अलम आगे बढ़ा और एक बार अलम जमीन करबला पे गिरा। अब्बास की आवाज आई, आका अलैका मिन्नी सलाम, मेरा आखिरी सलाम ले लो। हुसैन ने कमर पकड़ के कहा, अलान इनकसरा ज़हरी, अब्बास तुम नहीं मरे, हुसैन की कमर टूट गई। और सकीना ने पानी का खाली कूजा जमीन पे फेंका, दोनों हाथों को सर पे मारा, फरियाद की, चचा मुझे पानी नहीं चाहिए, वापिस आ जा, चचा वापिस आ जा। और हुसैन अब्बास के सरहाने पहुंचे। यहाँ पर भी एक बड़ा अजीब जुमला है, लेकिन अब वक्त नहीं है मेरे पास कि मैं इसको बयान करूं, आपका मातम भी जरूरी है। एक बहुत अजीब जुमला है, कभी और सुनिएगा। हुसैन अब्बास के करीब गए, एक मरतबा जब पहुंचे तो अब्बास आखिरी सांसें ले रहे, मेरा आका जमीन करबला पे बैठ गया। अब्बास का सर उठा के गोद में रखा, अब्बास को यह आखिरी वसीयत है, कहा जब मौला पैदा हुआ था तो पहली जियारत आपके चेहरे की थी, दिल चाहता है दुनिया से जाते हुए आखिरी जियारत भी आपके चेहरे की करूं, लेकिन क्या करूं, एक आंख में तीर लग चुका, दूसरी आंख में खून जम गया, मौला मेरे हाथ सलामत होते तो खून खुद साफ कर देता, बस ये जरा खून साफ कर दीजिए। हुसैन ने अबा के दामन से उसे अब्बास की आंख से खून साफ किया, अब्बास की आखिरी निगाह हुसैन पे पड़ी, अब्बास दुनिया से रुखसत हुए, हुसैन ने अलम उठाया, सीधा खेमा गा में आए, ज़ैनब के हवाले ये अलम किया, ज़ैनब ये अलम संभालो, मेरा अब्बास मारा गया, अब मैं जा रहा हूँ। ज़ैनब ने कहा, भैया जरा ठहर जा, मैं अभी आती। ज़ैनब ये अलम लेकर सहन खेमा में आई, आवाज दी, ऐ कुलसूम, ऐ लैला, ऐ फरवा, ऐ रबाब, जरा यहाँ तो आना, सारी बीवी आ गई, शहजादी क्या बात है? कल रात को मैंने वादा किया था ना कि तुम्हारी चादरें सलामत रहेंगी, अली की बेटी अपना वादा वापस लेती है, अरे मेरा बास मारा गया, हाय अलम आ गया, अलमदार ना आया, अलम आ गया।